सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम
हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम
हरे राम
राम राम हरे हरे। एक बार सब लोग जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम
हरे राम
राम राम हरे हरे। तो आज के इस 18 नवंबर के शाम को हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 35वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 10वें अध्याय का नाम है भगवान का ऐश्वर्य, इसको विभूति योग भी कहते हैं। इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करते हैं और साथ साथ किस किस चीज में उनको हम देख सकते हैं ये बताते हैं, कॉमन चीजें। मेरे बाद आप दोहराइए जितना हो सके उतना। बृहत् साम यथा साम्नाम, बहुत सिंपल है, बृहत् साम तथा साम्नाम, गायत्री छंद सामहम, गायत्री छंद सामहम, मासानाम मार्गशीर्षोहम, मासानाम मार्गशीर्षोहम, ऋतूनाम कुसुमाकरः, ऋतूनाम कुसुमाकरः, अर्थात मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ अगेन, और समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाली गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो सामवेद का एक अंग है जिसका नाम है बृहत साम, जो देवता लोग भगवान के आनंद के लिए मधुर ध्वनि में बीच रात में गाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो सामवेद में जो बृहत साम है वो मैं हूं। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान हैं, इसमें लय और ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमानी नहीं होती। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों के द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए गायत्री मंत्र परमेश्वर का स्वरूप है। ये मंत्र अध्यात्म में उन्नति प्राप्त किए हुए लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उनको सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा ये उनसे आगे बढ़ते रहता है। फिर तीसरा वर्णन दिया है मासों का। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में अन्न एकत्र होता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि ये तो न तो बहुत गर्म होता है न सर्दी होती है और सब वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, अतः समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है वसंत ऋतु को, और ये भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो ये श्लोक का तात्पर्य समाप्त होता है। तो इस तरह से ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये अध्याय इतना सुंदर अध्याय है। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान कण कण में समाये हुए हैं, लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर सकते, उनकी अनुभूति होती नहीं हमें। तो भगवान ने हमको इस अध्याय के माध्यम से बताया है कि हम कैसे कैसे उनको हर जीवन के हर गतिविधि में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग खाना तो खाते हैं सब लोग, तो वो कहते हैं कि रसो हम अपसु कौन्तेया। जब आप जल पीते हैं तो जल का स्वाद तो चंडीगढ़ में अलग है, मुंबई में अलग है, वृंदावन में अलग है, मद्रास में अलग है, इंग्लैंड में अलग है ना, तो विविधतापूर्ण है ना वो। तो कहते हैं कि जल के जो अंदर जो विविधतापूर्ण स्वाद है वो मैं हूँ। तो आप इंग्लैंड में पानी पियेंगे तो भी जल का स्वाद भगवान है, वृंदावन में पियेंगे तो भी भगवान है, चंडीगढ़ में पिए तो भगवान है। हम जो जल तो सब लोग पीते हैं, तो इतना आसान हो गया भगवान को याद करना। अगर आप जल पीते समय अगर उसके स्वाद पर ध्यान देते हैं तो आप भगवान को अनुभव कर रहे हैं। आकाश में सब लोग देखते हैं ना, चांद आया कि नहीं, सूरज आया कि नहीं, तो भगवान कहते हैं कि सूरज और चंद्र मेरी आंखें हैं। तो अगर आपने कैजुअली भी आकाश में देख लिया और आपको ध्यान आया, अरे भगवान ने कहा था ये तो मेरी आंखें हैं, तो आपको लगेगा कि मैं भगवान की आंखों को देख रहा हूं, भगवान भी उनकी आंखों से आपको देख रहे हैं बाय द वे दिन में और रात में। हाँ, तो कितना आसान हो गया। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सभी प्राणियों में मैं सिंह हूं, आई एम लायन। तो अगर आप कहीं जू में गए और लायन को देखा, आपको याद आए कि अरे भगवान ने कहा था कि सब प्राणियों में लायन हूं मैं, तो आपको उनकी याद आएगी। फिर सब फूलों में मैं गुलाब हूं, फलों में मैं आम हूं, ऐसे बताया, काफी वर्णन दिया, एकदम डिटेल में दिया है इस अध्याय में पूर्ण वर्णन। जैसे जल वृंदावन में मुझे एक बार महाराज ने कहा था, मैं आपको बताता हूँ, सुंदर बात बताई थी कि कैसे अगर कोई व्यक्ति भगवान को चाहता है तो वो हर गतिविधि में, हर दिशा में, हर कार्य में, हर चीज में उनको देखेगा। समझो किसी व्यक्ति को, जो बालक है, नया नया बालक है, तो आपको हर कदम पे उसकी याद रहेगी। आपका खाना बनाते होंगे या तो बाथरूम में होंगे या और कुछ करते होंगे, फोन पर ध्यान तो बालक पर रहेगा आपका। तो यू कैनॉट फॉरगेट द चाइल्ड, व्हेन द चाइल्ड इज न्यू इन योर हाउस द होल माइंड इज विद द चाइल्ड। हाँ, उस तरह से भगवान का होता है, भक्त होता है उसके लिए भगवान वैसे होते हैं। इस तरह से एक माँ अपने बालक को 24/7 याद करती है, भूल ही सकती नहीं है। उस तरह से एक भक्त होता है, वो भगवान को कोई भूल नहीं सकता है, उसको हर दिशा में हर जगह पे वही दिखता है। तो हम एक बार वृंदावन में एक कोठी में रह रहे थे, जैसे आपका घर है ऐसे कोठी में रह रहे थे महाराज और मैं, और सुबह का समय था और 8 बज रहे थे, सूरज की बहुत सुंदर किरणें आ रही थी, हम लोग थोड़ा गार्डन में वॉकवे कर रहे थे और मंद मंद हवा आ रही थी। तो हम लोग, महाराज ने कहा रुक जाओ, तो मैं रुक गए। तो कह रहे कि हवा को महसूस करो, तुमने आंख बंद कर लिया और हवा का जो ऐसे स्पर्श हो रहा था उसको महसूस किया। तो उन्होंने कहा आप जानते हो ये हवा क्या चीज़ है वृंदावन में? उन्होंने कहा वृंदावन में ये जो हवा आती है ना, लहरें हवा की, ये जब आ रही है तो भगवान आपको आलिंगन दे रहे हैं, ही इज एक्सेप्टिंग यू इन हिज आर्म्स एज यू हैव कम टू वृंदावन, ही इज करेसिंग यू इन योर आर्म्स। अभी हवा तो वृंदावन में हर रोज आती है, लेकिन जब कोई सिद्ध पुरुष आपको एक अनुभूति देता है, एक दृष्टि दिलाता है, तो आपको उसमें भी कुछ नई चीज प्राप्त होती है, जो सबको प्राप्त हो लेकिन समझ में कुछ को नहीं आ रहा है, लेकिन एक संत के कृपा से वही चीज आपको कुछ अलग अनुभूति दे जाती है। तो ऐसे ही भगवान ने यहाँ पर वर्णन दिया। तो ये जो गायत्री का वर्णन दिया है ना, सब लोग गायत्री मंत्र सुनते हैं ना, हम लोग स्कूलों में टेप में लगाते हैं, है ना, एवरीवेयर वी आर प्लेइंग इट, बट उसका 100% लाभ जो वो दे सकता है वो तब दे मिलेगा जब ब्राह्मण के गुण उस व्यक्ति के अंदर आएंगे, क्योंकि वो ब्राह्मणों के लिए दिया गया वो मंत्र है, उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं, जो हम लोग आमतौर पर सुनते हैं ना लाउड स्पीकर पे, उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। हाँ, वो ब्रह्म गायत्री कहते हैं, उसके अधिष्ठाता ब्रह्मदेव हैं, और वो ब्रह्म उसके गुरु भी हैं, और ब्रह्मा के द्वारा वो प्राप्त हुआ है, और ऐसे अनेक गायत्री मंत्र होते हैं, हम केवल वो आम जनता में वो सुनते हैं, लेकिन ऐसे अनंत गायत्री मंत्र हैं, गरुड़ जी का गायत्री मंत्र है, चंद्र का गायत्री मंत्र है, देवी का गायत्री मंत्र है, ब्रह्मा जी का सॉरी गणेश जी का गायत्री मंत्र है, श्री कृष्ण का गायत्री मंत्र है, विष्णु का अलग मंत्र है, नारायण का अलग मंत्र है, शिव जी का अलग मंत्र है, हर एक देवता का गायत्री मंत्र है, उसमें दो तत्व होते हैं, धीमहि और आई कैन टेल एवरीथिंग टू यू बिकॉज इट्स ऑल्सो कॉन्फिडेंशियल, लेकिन उसमें दो तत्व होते हैं, जो तत्व किसी को लगाए जाएंगे नाम से तो वो उसका गायत्री मंत्र हो जाता है, लेकिन गायत्री मंत्र के उच्चारण के अंदर भयंकर शक्ति है, अति दिव्य शक्ति है उसके अंदर। जैसे इधर बताया गया ना, अगर कोई व्यक्ति उस जप करने के योग्य बन जाता है और वो जब करता है उसके बाद में, तो सीधे भगवत धाम पहुंच जाता है वो इस जीवन के अंत में, इतनी शक्ति है उसमें। तो निर्देश निर्देश ये किया गया है कि वो जप को पूर्ण लाभ करने के लिए व्यक्ति के अंदर भगवत गीता में दिए हुए सत्व गुण के गुण आने चाहिए, सत्व गुण का प्रभाव जिसमें है, जैसे शुद्धि, पवित्रता, आचार विचार में पवित्रता, भोजन में पवित्रता, व्यवहार में पवित्रता, फिर भगवान में आस्तिक्य यानी भगवान में श्रद्धा, भगवान के विषय में ज्ञान, और शमत दमस तपस शौचम यानी क्षमा करने की प्रवृत्ति, इंद्रियों को दमन करने की प्रवृत्ति, व्रत करने की प्रवृत्ति, सत्य बोलने की प्रवृत्ति, भगवान पर आस्था निष्ठा, भगवान के भक्तों की सेवा करने की प्रवृत्ति, नम्रता, आस्तिक्य, नम्रता, ज्ञान, ये सारे गुण जब प्रकट हो जाते हैं तो सुसत्व गुण के गुण कहते हैं, या तो ब्राह्मण के गुण कहते हैं, ब्रह्म कर्म स्वभाव जब, ऐसे भगवान बताते हैं गीता में, वो गुण जब हम अपने आप में पैदा करते हैं उसके बाद में गायत्री जन मंत्र का आपके ऊपर हजारों करोड़ों गुना अधिक असर होगा। और गायत्री का जप करने से प्राथमिक लाभ क्या है, हम जो भगवान का नाम का जप करते हैं ना, उस नाम के जप में अति पवित्रता और शुद्धि प्राप्त होती है, और नाम के जप करने के लिए हमारी आत्मा और हमारा मन एक योग्य और पवित्र अवस्था में हो जाता है। इसलिए हमको जब गुरु जी ने गायत्री मंत्र दिया है तो उसके पहले हरिनाम मंत्र देते हैं, हरिनाम मंत्र यानी जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, या तो रामानंदी संप्रदाय में राम जी का श्री राम जय राम देते सकते हैं, उसको प्रथम दीक्षा कहते हैं, नाम दीक्षा कहते हैं, और नाम दीक्षा के बाद में काफी समय तक जप करने के पश्चात जब व्यक्ति ब्राह्मण के गुण अपने अंदर पैदा करता है प्रयत्न पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करके, फिर उसको गायत्री मंत्र देता है देते हैं गुरु जी, उसको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, तो उपनयन संस्कार कहते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा में एक गायत्री मंत्र नहीं मिलता है, काफी गायत्री मंत्र मिलते हैं, सब गुप्त रहते हैं, उसको उच्चारण भी नहीं कर सकते, उसको मन के अंदर हमको चिंतन करना होता है दिन में 3 बार, और जब वो दिन में 3 बार उन सारे मंत्रों का कुछ नंबर होता है उसका, जब उसका चिंतन होता है तो बहुत सुंदर अनुभूति पवित्रता की प्राप्त होती है, और वो पवित्रता की अनुभूति के आधार पर जो हरिनाम जप है वो अति सुंदर होता है। और ये सारी जो है ना, ये अनुभूति की बातें हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि आपको गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है तो आप कहेंगे आम भी मीठा होता है, लेकिन मैं कहा नहीं, वो गुलाब जामुन डिफरेंट होता है, नहीं, वो आम भी मीठा होता है, मैंने आम भी खाया है, तो आपको उसको कैसे समझाएंगे? फिर किस तीसरा कोई कहेगा अरे जलेबी भी मीठी होती है, तो मैंने कहा नहीं, वो जलेबी डिफरेंट होती है, वो गुलाब जामुन डिफरेंट होता है, नहीं, वो लड्डू होता है वो मीठा होता है, आप कहेंगे नहीं लड्डू भी डिफरेंट होता है, तभी समझो अभी आप ऐसे डिस्कस करते रहेंगे तो अगर आपको समझाना है, मुझे रियली समझाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये भाई लो इसको गुलाब जामुन को खाओ। जब आप खाएंगे तो आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और फिर बोलेंगे अभी गुलाब जामुन खाए ना, अभी जलेबी खाओ, तो जलेबी भी खाएगा, तो दोनों मीठा है, लेकिन समझ में आएगा कि इसके अंदर डिफरेंस डिफरेंस क्या है। फिर लड्डू खाएगा तो मालूम पड़ेगा ये भी डिफरेंट है, सब चीज़ मीठी है लेकिन सब मीठे चीज़ों में अंतर भी होता है और सबका अनुभव भी अलग अलग होता है। तो ये जैसे ही अनुभव होता है ना, वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ है। इसके बारे में कुछ हद तक चर्चा कर सकते हैं कि भगवान का नाम बड़ा आनंददायी है, भगवान का नाम उनका आनंद नाम में और उनके आनंद नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, अब तो एक एक लेवल तक हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डिस्कस ही करते रहेंगे तो कुछ लाभ नहीं। वो कैसे हो गया, वो मधु की जो बोतल होते ना, हनी बोतल, उसका पहले वर्णन किया और फिर बाहर से उसको लिख करते रहे, तो कभी समझ में नहीं आएगा आपको कि मधु क्या होता है, लेकिन सिंपल चीज़ें ढक्कन खोलो और उसको एक बार देख लो क्या है वो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर क्या है, इसकी मिठास का मतलब क्या है। तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो मतलब ऑलमोस्ट 100% अनुभूति की बातें हैं, लेकिन वो उन तक पहुंचने के लिए कुछ प्रवचन भी देना पड़ता है, कुछ डिस्कशन भी करना पड़ता है, लेकिन उसके आगे सारी चीज़ें अनुभूति की है। और जो अनुभूति करना चाहता है उसके लिए अनंत अथाह सागर की तरह अनुभूति अवेलेबल है, क्योंकि भगवान भी अथाह है, अनंत है, और वो इतने अनंत है कि आपको हर चीज़ में वो दर्शन दे सकते हैं, केवल देखने वाले की दृष्टि चाहिए। जब प्रेम होता है, जैसे आप अपने बालक को देखते हो और कोई व्यक्ति देखता है, कितना अंतर है उसके अंदर। आप अपने बालक को 24/7 देखते रह सकते हो, हम बोलेंगे तो पागल हो गए, क्या क्या देख रहे हैं उसके अंदर। लेकिन प्रेम एक ऐसी एक वस्तु होती है कि वो अगर आपके हृदय में होगी तो बालक को आप 100 साल भी देख सकते रहते हो, देख सकते रहते हो, यू कैन कीप ऑन वॉचिंग आउट ऑफ लव। वैसे ही भगवान का नाम है, लोग बोलते हैं क्या ये हरे कृष्ण महामंत्र, वही रटते हैं, कितना दो दो तीन तीन घंटा रटते हैं, कभी कभी 7 दिन उसका सप्ताह रखते हैं, वही गंत्र वही रिपीट करते हैं, कोई चेंज नहीं उसके अंदर, कुछ नहीं, कोई नया गाना गाओ भी वही पुराना गाना कितने दिन गाएंगे। लेकिन जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम है, वही नाम जो है उसको जिंदगियों अनेक जन्मों तक उसको आनंद देते रहेगा वो, क्योंकि हर दिन आप जो एक भगवान का नाम लेंगे वो नया होगा, नूतन होगा, नव नवायमान होगा, नई दुल्हन की तरह सुंदर होगा, उसमें नए अनुभूतियाँ होगी हर रोज। हम लोग हर रोज चावल दाल सब्जी रोटी खाते हैं ना, तो हमने रोज क्या खाना है उसको, चलो कभी एक बार चाइनीज खा लिया, लेकिन अपना स्टेपल फूड क्या है, चावल दाल रोटी सब्जी। और आप समझो कहीं फॉरेन में भी गए और पिज्ज़ा वज्ज़ा खाते खाते तो घर में चावल की याद आएगी, चावल एक बार घर में आके कड़ी चावल खाना है। आप बोलेंगे जिंदगी भर चावल खाते आ रहे हैं कड़ी चावल, लेकिन फिर भी हर बार जब खाते हैं तो उसमें नया स्वाद है और आपको वो आनंद देता है ना। हमारे गांव में जाएंगे साउथ इंडिया में तो आप बोलेंगे क्या डोसा खाते हैं दिन रात डोसा, सुबह हर रोज इडली, लेकिन हमको पूछेंगे तो हमको हर रोज नया आनंद आता है उसके अंदर। वैसे ही भक्त को भगवान के नाम के अंदर आनंद आता है, चाहे वो एक ही राग में रोज गाता हो, ऐसा नहीं कि वो अलग राग में तो विविधता मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर एक ही भी राग में गाता हो तो भी उसको आनंद आएगा। हमारे वो महाराज है ना कुरुक्षेत्र के, सुखदेव जी महाराज, उनकी खासियत थी उनको संगीत वंगीत से ज़्यादा कोई लेन देन नहीं है उनसे, वो एक ही ट्यून में हरे कृष्ण मंत्र गाते थे एक ही ट्यून में, और अकेले मंगल आरती करते थे। हाँ तो उस समय कुरुक्षेत्र मंदिर में तो भक्त भी नहीं थे, वो अकेले थे बेचारे, सुबह अकेले उठते थे भगवान को जगाते थे, और तभी आपकी शादी वादी नहीं हुई थी, आप तो भी घर पे थे आपने, तो अकेले मंगल आरती करते थे, कोई साथ में कोई है ही नहीं देखने वाला या अटेंडेंस का कोई श्रोता कोई है नहीं, वो ना नाचते हुए मंगल आरती करते थे, आरती कर रहे हैं भगवान की, वो नाच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, वो भी एक ही ट्यून में सालों साल गाते थे, गोविंदा 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 गोपाला 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 गोपाला, हमको तो क्या है, क्या सुर नहीं ताल नहीं क्या है, और इतना आनंद से गाते थे वो, इतना रस से गाते थे। हाँ हम तो ताल सुर देख रहे हैं कौन सा राग में गा रहे हैं, कौन सा ट्यून में गा रहे हैं, अच्छी लग रही ट्यून की नहीं लग रही, आवाज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी लग रही, वो हमारा विचारधारा है, लेकिन जिसको भगवान पर प्रेम है उसको क्या है ताल सुर का क्या मतलब है, उस नाम से मतलब है उसको। हमारे भीमसेन जो है ना, पांडवों के सेकंड नंबर भाई, वो बहुत गाने वाने बेकार थे बहुत, उनको गाना नहीं आता था। तो जब भी वो गाते थे सब दुनिया हंसती थी उनको। तो वो भगवान को बोलते थे कि मुझे गाना वाना नहीं आता है, और मैं जब गाता हूँ तो लोग हंसते हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों जंगल में जाया करेंगे, वहाँ मेरे लिए गाया करो आप। तो अपने वैसे भी आवाज़ में वो अकेले भगवान के लिए गाया करते थे। अब भगवान बड़ा आनंद लेते थे उसके अंदर, क्योंकि भगवान कभी भी सुरताल नहीं देखते हैं, भगवान खाली आपका भाव देखते हैं, और भाव में सुरताल की जरूरत नहीं होती है। जब आप कोई बच्चे के लिए गीत गाते हो, थोड़ी आप खुद सिंगर हो, कोई ट्रेनिंग लेकर आए हो, लेकिन आप जब गाते हो तो बच्चा हंसता है, तो प्रेम से गाते हो उसके लिए। कोई टूटे फूटे बोल गाते होंगे, कोई राइम नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन जब आप गाते हो वो सब लव अट्रैक्ट्स द हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द बेबी, एंड बेबी इज सो हैप्पी। आप गाओ या मत गाओ, आप बोलोगे तो भी बेबी के लिए आनंद है, आवाज़ सुनते ही खुश हो जाती है बेबी। तो ये भगवान इस सारे माध्यम से उनको बता रहे हैं, अल्टीमेटली भाव चाहिए। हाँ, अगर भाव होगा आपका तो आपको हर जगह भगवान दिखेंगे, और भाव नहीं है तो वो किधर भी नहीं है। इसका मतलब सब जगह ओपन है लेकिन फिर भी बंद है, गोपनीय है, गुह्य है, गुप्त है ना। इस ओपन सीक्रेट, अभी गीता किसके लिए अवेलेबल नहीं है, सब जगह मिल रही है, 100 रुपया दो सब गीता मिलेगी आपको। लेकिन कहा कहा गया है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमोत्तमम, फिर भी उसको राज गुह्य का मतलब इज अ किंग, किंग ऑफ सीक्रेट्स बताया गया है। क्या सीक्रेट क्या है? तो ओपन है इसके अंदर, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, हिंदी ने तो इंग्लिश में पढ़ो, नहीं तो कन्नड़ में पढ़ो, कन्नड़ में, तमिल में पढ़ो, कोई भाषा का, गुजराती में पढ़ो, सब में दिया गया है उसको। लेकिन फिर भी उसको राज गुह्यम क्यों कहा गया है? जब तक भाव नहीं है तो गुह्य ही गुह्य है वो। क्या
अगर भाग लिए तो
समझ में आएगा? लेकिन थोड़ा थोड़ा आएगा, भाव रहेगा तो ज्यादा आएगा समझ में। ऐसा है, जैसे अभी समझो आप लेडी हो, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप कुकिंग करते हो। आई एम अ मैन, मुझे शायद इंटरेस्ट नहीं है। तब मुझे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, डोसा ऐसे बनता है, डोसों में वैरायटी होती है, तो हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे बोलते जाऊंगा। लेकिन कोई अगर इंटरेस्ट वाला आ जाएगा तो तुरंत नोट बना लेगा, अच्छा, आप क्या डालते हो, अच्छा ये डालते हो, चटनी में क्या डालते हो, तुरंत लिख लेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नीर डोसा, इसको बोलते हैं क्या, इसको पोड़ा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको उत्तापा बोलते हैं। अरे एक में 3 वैरायटी हो गई, अच्छा ऐसा भी करते हैं आप, ऐसा बोलेंगे। तो इंटरेस्ट रहेगा मतलब भाव रहेगा, तो कितना नॉलेज आपको प्राप्त हो गया, ऑलरेडी यू अंडरस्टैंड। बट इसको डोसा क्या है, भोजन मिलने से मतलब है, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो भाव जो है ना वो संतों के संग में प्राप्त, तो सत्संग हम करते हैं तो भाव प्राप्त होता है। अगर इन्होंने मुझे बताया कि ये आइटम ऐसे बना, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं खाया और मुझे बहुत स्वाद आया, वो मुझे लगा कि अरे चंडीगढ़ में खाया तो बॉम्बे में मुझे मिलना चाहिए, तो फिर इंक्वायरी करूँगा कैसे बना, मैं मेरी बीवी को बताऊँगा, उसको फ़ोन करूँगा और रेसिपी लिखवा लूँगा। तो संग हो गया ना उसका, वो आइटम का संग हो गया उनके साथ में, तो अट्रैक्शन पैदा हो गया, तो उसके बाद में आगे बढ़े। तो संतों के संग में नहीं रहेंगे तो दुनियादारी करते रहेंगे, बट संतों के संग में आएंगे तो वो आपको वो अट्रैक्शन भगवान के लिए देंगे, उनके संग में, उनके चर्चा में, विचार में, उनका भाव शेयर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, और वो जो भी लेगा उसको मिलेगा। श्रोता तो बहुत होते हैं, कभी कभी तो सभा में हजारों लोग बैठे रहते हैं, श्रोता वही बोल रहे हैं, सब वही सुन रहे हैं, लेकिन सब लोग सब कुछ पिकअप नहीं करते ना, फिर वो जैसे लेने का जिसका मूड है वैसे वो ले लेता है। लेकिन प्राप्त होता है संतों के संग में ही, संतों के संग में भगवान का नाम मिलता है, भगवान के नाम की रुचि प्राप्त होती है, भगवान को हम पहचानते हैं, भगवान को समझते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उनके संग में होता है सब कुछ। इसलिए मनुष्य जीवन के लिए कई प्रकार के आध्यात्मिक विधि बताई गई है, जैसे आप नदी में भी स्नान कर सकते हैं, पवित्र नदी में उत्सव मना सकते हैं, जन्माष्टमी का या रामनवमी का, या दान दे सकते हैं, या गाय की सेवा कर सकते हैं, या तुलसी की सेवा कर सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसे कई प्रकार की विधियाँ हैं, लेकिन जब तक सत्संग नहीं होता है इन किसी विधियों को अर्थ नहीं है, वो मैकेनिकल हो जाता है, चलो मम्मी भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, मम्मी बोले करना चाहिए आपको, हाँ मैं भी डूब रहा हूँ पानी में, बट बेनिफिट मुझे मम्मी इतना नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे श्रद्धा नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो संत का संग जो होता है ना, उसके अंदर इन सारी चीजों को मीनिंग प्राप्त होता है कि नदी में स्नान क्यों कर रहे हैं, भगवान को दीपक क्यों दिखा रहे हैं, पहले अगरबत्ती धूप क्यों दिखा रहे हैं, उसके बाद झुक के प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये सारों को अर्थ प्राप्त होता है सत्संग के अंदर। और सत्संग का अर्थ ये है सत्य वस्तु में किया गया संग, और सत वस्तु है भगवान, सबसे परम सत्य भगवान है, तो उनके विषय में किया हुआ जो संग है उसको सत्संग कहते हैं। और गहरी व्याख्या उसे ऐसी है कि वो सत्संग को सत्संग तब कहते हैं जब वो करने के बाद में आपको भगवान के प्रति और ज्यादा श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है। आप सबके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन अगर सत्संग आप करते हैं तो उस सत्संग की वजह से आपके अगर बढ़ गई श्रद्धा, इंटरेस्ट आपका बढ़ गया और आपको प्रेरणा मिली उसमें कि और कुछ करना चाहिए, तो वो रियल सत्संग है। किसी भक्त के साथ में पिक्चर देखना सत्संग नहीं है, बोले अरे हम तो पिक्चर गए थे, भक्तों के साथ में गए थे, संग में गए थे पिक्चर देखने के लिए नहीं, विषय सत होना चाहिए उसमें, उस संघ का विषय सत होना चाहिए, और वो संघ का विषय होने के बाद भी आपको आज जितनी प्रेरणा है उससे अधिक प्रेरणा मिलनी चाहिए, तब वो रियल सत्संग हो गया। और हमें वैसा सत्संग नियमित रूप से करना चाहिए। हर सत्संग में आपको अगर आपने 101 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं तो उस सत्संग में 102 भी सीढ़ी आपको चढ़ना चाहिए, 1000 सीढ़ी चढ़ चुके हैं तो अगले सत्संग में 1000 की एक वाली सीढ़ी आपको चढ़ना चाहिए। एवरी टाइम यू मेक अनदर स्टेप, दैट इज रियल सत्संग। तो हम भाव की बात कर रहे थे, उन्होंने भाव का प्रश्न किया था, तो ये भाव सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कॉमन डीलिंग्स के अंदर भी, भाव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल चीजों में लोगों को रस नहीं आता है, जहां भाव होता है वहां पर लोग जाते रहते हैं, तो ये भाव से ही जिंदगी का एक रस पैदा होता है और हमारी जिंदगी भी थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, स्वादिष्ट बन जाती है। भाव नहीं है समझो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन भाव पूर्ण लोग नहीं है आपके पास, रिश्ते नाते नहीं है उतने, सब है, धन दौलत है, इज्जत है, नाम है, एजुकेशन है, सब कुछ है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर भावपूर्ण रिश्ते नहीं है तो आपको उस जीवन में आनंद नहीं आएगा। क्या करना है उस पैसे का, इतने बड़े घर का करना क्या है, अगर लोग नहीं हैं जिसपे हम भाव रखते हैं तो आपको उस एक भी वस्तु का आनंद नहीं आएगा। समझो तो आप बहुत गरीब हैं, आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, छोटा सा घर है, छोटा सा नौकरी है, छोटा सा काम करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी भावपूर्ण परिवार है आपका, तो आप उसको, आपको आधी सूखी रोटी में भी बहुत आनंद आएगा बैठ के खाने में सबके साथ में, और पंच पकवान भी रहेंगे और प्रेम और भाव नहीं है तो आपको आनंद नहीं आएगा। स्वभाव उसको कहते हैं जो हम पिछले कर्मों को लेके आते हैं ना, उसे स्वभाव बनता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म और हमारी अधूरी इच्छाएं, ये तीन मिलकर अगर आप जो उसको बनाएंगे कॉन्सेंट्रेट तो हो गया स्वभाव आपका। और स्वभाव भगवान के भजन से बदलता है, क्यों बदलता है, भगवान का भजन करने से अच्छे कर्म बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो भगवान की ओर चेंज हो जाती है, इसलिए भगवान का भजन करने के बाद में स्वभाव बदलते हुए नजर आता है। वो स्वभाव जो है वो भगवत भाव में जब रूपांतर होगा ना तो आपके जीवन में आनंद शुरू हो जाएगा, और बाकी समय जो आपको मिलता है उसको सुख कहते हैं, वो कुछ समय का रहता है बाद में खत्म हो जाता है, फिर नया चाहिए आपको कुछ। और जब वो स्वभाव आपका भगवत भाव बन जाता है तो आपको चिरंतन आनंद प्राप्त होता है, चाहे आपके पीछे सुख दुख की लाइन चलती रहेगी, आप एक समांतर आनंद में चलते रहते हैं।
इसको कहते हैं डिजायर्स।
हाँ?
डिजायर्स।
ये डिजायर्स जब तक हम भगवान के चरणों में रखते नहीं है, भगवत भावना भावित नहीं करते हैं, व्हेन यू डोंट मेक योर डिजायर्स गॉड कनेक्टेड डिजायर्स, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, देन दे गिव यू टेम्पररी हैप्पीनेस एंड दे कम एंड गो, कम एंड गो, कम एंड गो, दे डोंट गिव यू परमानेंट कंटिन्यूस हैप्पीनेस दैट यू आर लुकिंग फॉर। But when you connect your desires to God, then your permanent happiness starts, which you are looking for, actually which you want and it's your nature to have continuous permanent happiness. आनंदमयो भ्यास्यात, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इज नॉट सीन, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, इट्स आवर नेचर, इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर. लेकिन वो नहीं प्राप्त होता है क्योंकि हम भगवान से डिसकनेक्टेड हैं. जब हमारा जीवन हम भगवान से कनेक्ट कर देते हैं तो जैसे बल्ब है 2000 वाट का बल्ब है, जब तक वो बिजली से कनेक्टेड नहीं है और बटन ऑन नहीं है तब तक उसका प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है, अंधेरे रहेगा वो. इतना पावरफुल बल्ब ने एक नहीं 50 लगा के रखे लेकिन एक भी आपको लाइट नहीं देगा क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है. जब वो कनेक्ट हो जाता है तो सब हर एक बल्ब को मीनिंग प्राप्त होता है. हर एक बल्ब अपना अपना अस्तित्व दिखाता है और सारे मिलकर भी अपना अस्तित्व दिखाते हैं. तो ये भाव जो है ये हमको पैदा करना है. भाव पैदा करने का जो काम है वो मनुष्यों का है. हम कुत्ता बिल्ली से ये बातें नहीं कर सकते, पंछी से बात नहीं कर सकते, भाव की बातें पंछी से नहीं कर सकते. वो तो अपना जीवन जी रहे अपने तरीके से, उसको बदल नहीं सकते आप. लेकिन मनुष्य का भाव बदल सकता है. सत्संग में आने के बाद में मनुष्य के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो आपका भाव बदल सकता है. खुद का एफर्ट आपका होना ही चाहिए, उसके बिना बदलना इम्पॉसिबल है. जब खुद का एफर्ट आप करेंगे तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपका भाव बदलेगा. ये मैं समझना कि मेरे एफर्ट से मैं बदल रहा हूँ, देखो मैं कितना एफर्ट किया है. मेरा एफर्ट जरूर है लेकिन मेरे एफर्ट को फल भगवान देते हैं. आपका एफर्ट देखते हैं फिर वो कृपा करते हैं. तो दोनों जरूरी है साथ में होना. अगेन आंसर उसका एक ही है, सत्संग. नियमित आज हम लोग बैठे ना यहाँ पर भारत में, मेरे बचपन में भी ये जमाना था कि हर रोज शाम को सारा परिवार एकत्र होकर आधा घंटा एक घंटा संध्या के समय, जब संध्या के समय हम लोग क्या करते थे, आरती करते हैं, घी के दिए की आरती भगवान की करते हैं. ये हमारा कल्चर है क्योंकि उस समय सारे जो अशुभ चीज़ें हैं उसको हम भगा देते हैं. घंटी बजाते हैं वो भी पवित्र ध्वनि है, करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं और भगवान के घी के दीपक की आरती करते हैं. उससे सारी जो अशुभ चीज़ें हैं जो उस समय घर में आने का प्रवेश करते हैं ट्वाइलाइट टाइम पे, संधि काल में, वो सब भगा देते हैं. और उसके बाद तुरंत सब लोग बैठ जाके बैठ कर रामायण महाभारत भागवतम कृष्ण लीला इसके बारे में चर्चा करते थे रोज रोज का. ये घर का ऑटोमेटिक, अच्छा आपके घर में ऑलरेडी 10 लोग हैं तो वो ये घर में ऑटोमेटिक हुआ करता था. और घर में जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है, जो चाचा होंगे या दादा होंगे नाना होंगे जो भी कुछ अवेलेबल है, वो बैठ के भगवान का किताब खोलेंगे और 4 श्लोक पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य चीज डिस्कस करेंगे. जैसे आप प्रश्न कर रहे हो उसे प्रश्न करेंगे, प्रसाद लेंगे, सो जाएंगे. कितनी बढ़िया बात है. देखो और आज क्या होता है, जैसे शाम होती है तो टीवी ऑन हो जाता है, फिर आप बोल रहे हैं मुझे ये देखना है तो वो बोल रहे हैं मुझे वो देखना है, फिर मुझे वो देखना है, फिर झगड़े होते हैं, बोलते नहीं मुझे अलग टीवी लेके आओ, फिर मैं अलग मेरे रूम पे देख रहा हूँ, आप अपना देख रहे हैं, और सब लोग वो ढंड देखते रहते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर उसी मूड में खाना खा के सो जाते हैं. तो कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं. तो कैसे आपको मन शांति मिलेगी, कैसे आनंद मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन जब हम दिन भर काम करके शाम को हाथ पांव धो के भगवान को दीपक दिखाएंगे, या तो दीपक दिखाने में खड़े रहेंगे, कोई दीपक दिखा रहे हैं हम खड़े हुए, उसके बाद बैठेंगे और भगवान के साथ चर्चा करेंगे, आपका सारा जो कष्ट है, सारी पीड़ा, आपका जो क्षीण आपको हो गया है, जो टेंशन स्ट्रेस हो गया है, सब समाप्त हो जाएगा. भगवान के लीला के आनंद में आप आओगे, वो प्लेटफॉर्म पे आके प्रसाद पाओगे, सो जाओगे, अच्छी नींद आएगी आपको, सुबह उठेंगे फिर काम पे जाएंगे. ये हमारा कल्चर है. तो अभी वो कैसे है, वो टूट जाने की वजह से आपको हफ्ते में एक बार मंदिर में सत्संग करना पड़ रहा है, फिर नहीं तो 15 दिन में एक बार कर रहे हैं, अगर ट्रैवलिंग करो तो 1 महीने में एक बार भी मौका मिल रहा है. तो कैसे भाव उत्पन्न होगा, रोज स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे तो कैसे वो पास होंगे. नहीं मैं 1 महीने में एक बार जाके आऊँगा स्कूल में, फिर मैं एग्जाम दूंगा, हो सकता है क्या. एवरी डे दे हैव टू गो 5 आवर्स 6 आवर्स MBBS में. अरे हमने 15-15 घंटे पढ़ाई किया 5 साल 6 साल तक, तब जाके अभी लोगों को ट्रीट कर पा रहे हैं. तो वैसे ही आपको भगवान के पास जाना है, भगवत भाव को प्राप्त करना है. तो हाउ डू यू थिंक कि हाँ 3 महीने में एक बार मैं जाऊँगा, आधा घंटा बैठ के आऊँगा, इज इट पॉसिबल. ये सीरियस मामला है बहुत, और वो मनुष्यों का मामला है. मनुष्य जीवन का प्राइम बिजनेस वही है. तो वो हमको उसमें समय नहीं देंगे तो कहाँ से भाव आएगा. आपको आम चाहिए और आपने आम का पौधा लगा दिया घर पे, आंगन में लगा दिया, कभी जली नहीं दिया उसको, और मई महीने का मौसम आ गया, मार्केट में आम दिखाई पड़ा, देख रहे मेरे आम झाड़ में आम क्यों लगा नहीं आप? अरे वो पेड़ को आपने कभी जली नहीं दिया, कभी देखभाल नहीं किया उसका। अरे एक साल नहीं, उसको 10 साल जल देना पड़ता है, फिर 11वें साल के बाद में जो जो चालू करेगा आम देने का ना, आपकी जिंदगी होने तक चलेगा, आपके पोतों को भी आम देगा वो, लेकिन उस पहले उसको देना पड़ेगा ना आपको। आप पहले दिन से आम फल अपेक्षा करेंगे तो कैसे आम देगा वो, लेकिन एक बार उसकी देखभाल करेंगे ना, आपकी सेकेंड थर्ड जनरेशन तक वो आम देते रहेगा। वो बोलेंगे मेरे दादाजी ने लगाया था, उसके फल हम खा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे आप। एक दादाजी ने उसको काफी समय तक बिना फल का जल के जल दिया था, तब जाके हमने सारे लोगों ने उसके फल का आनंद लिया। ये मनुष्य जीवन है, इट इज मेंट फॉर कल्टिवेशन, वी वॉन्ट टू एंजॉय राइट फ्रॉम डे वन, बट ह्यूमन लाइफ इज कल्टिवेशन, यू कल्टिवेट एंड यू एंजॉय फॉर एवर, टेक पेन इन द बिगिनिंग एंड एंजॉय फॉर एवर। मटेरियल लाइफ कैसे रहता है, एंजॉय इन द बिगिनिंग सफर फॉर एवर, दिस इज मटेरियल लाइफ। राइट फ्रॉम बिगिनिंग यू एंजॉय एंड आफ्टर सम टाइम सफरिंग स्टार्ट्स, नेवर एंडिंग सफरिंग। इसलिए हम कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में बुद्धिमानी है। शुरू में कष्ट है, आप बोलेंगे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये करना नहीं, वो करना नहीं, ये नियम पालन करना है, सुबह उठना है, करना है, बहुत सारे, कितना तकलीफ है इसके अंदर, क्यों कर रहे हैं हम लोग वो, वही मंत्र रटना है 2-2 घंटे के लिए तब बोर हो रहा है हमको, नींद आ रही है, जल्दी उठाने को बोल रहे हैं, ठंडे पानी स्नान करने को बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में आपको इसमें इतना स्वाद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप खुद जंप हो जाएंगे सुबह बेड से, कि मुझे उठकर अभी भगवान का नाम जप करना है, मुझे उठकर अभी वृंदावन धाम में जाना है कार्तिक महीने में, वहाँ जाके दीप दान करना है, वहाँ जाके कथा सुनना है, इतना रुचि आएगा आपको। और एक बार आपका वो रुचि आ गया कुछ समय के बाद में, फिर लाइफ लॉन्ग आप उस रुचि में रहेंगे, लोग आपको हंसेंगे, लेकिन आपको परवाह नहीं पड़ेगी उसकी, आप अंदर में इतना आनंद का अनुभव करेंगे, हु केयर्स फॉर पीपल, लोग हंसो या रो, हु केयर्स, मैं तो आनंद ले रहा हूँ। तो बोलेंगे क्या चोरी रखी है, क्या पागल हो गए, धोती कुर्ता पहन के घूमते हैं, दुनिया देखो पैंट शर्ट पहन के घूमती है, आप लोग पागल हो गए हो, क्या लगाते हो सर पे घूमते हो। बट एक बार उस भक्त को उस आनंद की प्राप्ति हो गई, वो दुनिया की परवाह क्यों करेगा, हु केयर्स, आनंद में मस्त रहेगा वो, उसको दुख छुएगा नहीं, बाकी लोग तड़पते रहेंगे, वो आनंद में रहेगा। हर समय, हर समय, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एक बहुनाम विदुधाति कामान, एक क्षण भी ऐसा रहेगा नहीं आप दुखी रहेंगे, भले आपके जीवन में दुखों का सिलसिला बना रहेगा, वो तो चलते रहता है, उसका परिणाम आप पर नहीं होगा। ये इतनी बढ़िया चीज है, लेकिन अगेन जैसे मैं शुरू में बताया, प्रवचन कुछ हद तक कर सकते हैं, बाकी सारे अनुभव की बात है, जिसने वो खाया हुआ है उसको और एक प्रूफ की जरूरत नहीं है आपके, साइंटिफिक प्रूफ की, पहले आपने दिया उसको प्रूफ, लेकिन बाद में जब इसने खा लिया एक बार उसको, फिर उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं गुलाब जाम क्या होता है, एक बार खा लिया, ही विल नेक्स्ट टाइम आस्क, विल नॉट आस्क यू डिस्क्रिप्शन, ही ओनली आस्क एंड ही विल ईट। हाँ, तो वो स्वाद जो है ना, वो भाव है, जैसे आप बता रहे हो, वो भाव हमको प्राप्त करना चाहिए, अगर ये भाव को प्राप्त किए बिना हमारा जीवन अंत हो गया तो वो व्यर्थ हो गया, इट इज गॉन अ वेस्ट। जिसके लिए वो जीवन दिया गया था उसको छोड़ के सब कुछ किया लेकिन वो नहीं किया, तो वो वेस्ट ही हो गया ना पूरा। और अगर समझो आपने किया लेकिन पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने किया है तो निश्चित रूप में भगवान आपको पूरा दूसरे बार मनुष्य जन्म देंगे, क्योंकि आपने कम से कम प्रयास किया है मनुष्य जीवन के स्तर पर, इसलिए वो प्रयास को देखकर भगवान आपको दूसरा मनुष्य जीवन देंगे। एक बार आपने इस जीवन में भगवान का नाम लिया है तो आपको अगले जन्म में मनुष्य जन्म निश्चित है, क्योंकि मनुष्य जीवन का काम आपने मनुष्य जीवन में किया है तो भगवान ने भी आपको रिस्पांस दिया है और देंगे आपको रिस्पांस, लेकिन अगर नहीं करेंगे फिर पता नहीं कौन बनेंगे, यू डोंट नो हु विल बिकम, विच डायरेक्शन विल गो, नोबडी कैन से एनीथिंग, ऐसा है। और देखिए आगे क्या बताया, ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ, जैसे स्प्रिंग आता है तुरंत आपको याद आनी चाहिए, अरे भगवान सब ऋतु में वसंत ऋतु है, अभी कार्तिक महीना खत्म हो जाएगा, कौन सा महीना आएगा? मार्गशीर्ष, मासाणाम मार्गशीर्षो हम, मैं स्वयं मार्गशीर्ष मंथ हूँ, ऐसे बोल रहे भगवान। उसमें कई सारे उत्सव होते हैं, विधियाँ होती हैं, जिसको जिसको उसमें अलर्टनेस है ना, वो तुरंत उसको मालूम पड़ता है कि अभी आ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्तिक महीना आता है, लेकिन किसको याद रहता है कार्तिक महीना? खाली दिवाली में फटाके फोड़ने का तो याद आता है, लेकिन भक्त लोग प्लानिंग करके बराबर कार्तिक महीने के टिकट निकाल के डे वन को वहाँ पहुँच जाते हैं, 30 डेज वहाँ रहते हैं, वो लौट के रोज दीपदान करते हैं, कथा सुनते हैं, क्या क्या प्लानिंग करते हैं। तो क्या हुआ अल्टीमेटली? भाव की बातें हैं, आपको भाव कार्तिक के प्रति है तो आप पूरा उसका लाभ लेंगे, अल्टीमेट एवरीथिंग यू विल डू। नहीं तो फिर वैसे ही आम जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी रुकेगी नहीं आपके लिए, आप बिजी हो, लाइफ अपने पेस पे चलता रहेगा, और लाइफ का पेस कभी फास्ट नहीं होता है, कभी स्लो भी नहीं होता है, वो अपनी गति पे निश्चित रूप से चलता ही रहेगा। आप चाहे बिजी हो, नहीं बिजी हो, अच्छे हो, बीमार हो, टाइम विल नॉट वेट फॉर एनीबडी, विल गो इट्स ओन पेस। लेकिन वो जो गति है समय की, उसके साथ मिलकर आप समय का लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो फिर आप पूरा जिंदगी का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी जो है ना, वो मनुष्य की जिंदगी है, तो यू एंड मी आर गोइंग थ्रू ह्यूमन टाइम्स, एंड ह्यूमन टाइम इज वेरी पावरफुल, ह्यूमन लाइफ टाइम। एक एक क्षण आपका जिंदगी का जो है वो भगवत की प्राप्ति आपको कर दे सकता है, एक एक क्षण में वो पोटेंसी है, वो कुत्ते बुल्ली के टाइम में उतनी पोटेंसी नहीं है, डॉग टाइम, कैट टाइम, बर्ड टाइम, एनिमल टाइम, फिश टाइम, नो वैल्यू, जस्ट टेक बर्थ, डाई, डू समथिंग इन बिटवीन एंड गो अवे, बट ह्यूमन टाइम, ह्यूमन लाइफ टाइम कैन गिव यू कृष्णा, कैन गिव यू सुप्रीम लॉर्ड, कैन गिव यू ब्रह्म अनुभूति, और आपका ये सारा चक्र समाप्त करके आप आनंद के धाम में प्रवेश कर सकते हो। ये शक्ति इस जीवन के समय काल में है, इसलिए ये जीवन का समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक बुद्धि सही जगह पर है, शरीर भी थोड़ा सा ओके है, कोई ज़्यादा बड़ी डिजास्ट्रस कंडीशन घर पर नहीं हो रही है, मतलब छोटे मोटे चीज चलते रहते हैं, कोई बड़ा कोई हादसा नहीं हो रहा है, तब तक इसमें मन लगाना चाहिए, क्योंकि कब बड़ा हादसा होगा नो वन नोज, कब बड़ी समस्या आएगी नो वन नोज, कब डिजास्टर आएगा नो वन नोज, उसके बाद में जगना नहीं चाहिए, वो क्राइसिस में क्या करेंगे हम लोग? हार्ट अटैक आने के बाद में वॉकिंग शुरू करेंगे तो अच्छा है, लेकिन डैमेज तो हो गया ना आपका, लेकिन उसके पहले आप रोज चलते रहेंगे तो हार्ट अटैक ही नहीं आएगा। वैसा ही स्पिरिचुअल लाइफ है, शुरू से ही इसमें मन लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं, कौमारम आचरित प्रज्ञस, 5 साल तब तक बचपन में खेलने का परमिशन है, 5 साल के बाद में फिर ट्रेनिंग शुरू होना चाहिए तुरंत, थोड़ा मोटा जो भी, नॉट वेरी टैक्सिंग एज सच, बट थोड़ा बहुत ट्रेनिंग शुरू होना चाहिए और बच्चे को उसमें लाना चाहिए, क्योंकि 5 साल के उम्र में जो रुचि लगेगी वही जीवन भर काम आएगी। 70 साल की उम्र में आप नया कुछ चीज नहीं सीख सकते, यू कांट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग, है ना? सर्कस में कौन से एक एनिमल लेते हैं? पिल्ला पिल्ला एनिमल लेते हैं, सब बच्चे बच्चे एनिमल लेते हैं, और बचपन से उस सब ट्रिक्स सिखाते हैं, तब जाके हाथी एक टेबल पे खड़ा रहता है चारों पैर लेकर, बट बुढ़ा हाथी को लेके आके बोलेंगे ये टेबल पे खड़ा हो जाए तो एक पैर भी धकेगा नहीं उसके ऊपर, इज नॉट ट्रेंड फॉर दैट, इज लाइफ इज गॉन। इसलिए बचपन से ही इसको संस्कार में रूप में होना चाहिए, तब जाके बुढ़ापे में एकदम आसानी से सब होगा, जो जीवन भर किया है तो अभी इट बिकम नेचुरल, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन वो रोज का जो हैबिट था वो चलते रहेगा। आपका नाम क्या है, आप कौन हो, ऐसे पूछेंगे आप, भूल जाएंगे आप कौन हो, लेकिन हरे कृष्ण करते रहेंगे। अरे आपको मैंने देखा था, नहीं दादाजी मैं आपके पोते हूँ, अच्छा अच्छा तो वो तुम अंजलि हो, ठीक है, अच्छा अच्छा ऐसे बोलेंगे बूढ़े लोग, लेकिन जीवन भर अगर जब किया है तो फिर उनके ऐसा उंगली ऐसे घूमती रहेगी, चिंतन चलते रहेगा। हमने देखा हुआ है सब, मरते हुए भी ऐसे कुछ बोल नहीं पा रहे लेकिन ऐसे हाथ हिल रहे हैं, मतलब मन में उसका जब चल रहा है, जितना जीवन भर करके आए तो बिल्कुल काउंट होगा। ध्यान है, मुंह से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन जब उंगली घूम रही है तो मन में हरे कृष्णा चिंतन चल रहा है ना, उंगली क्यों घूम रही है? अदरवाइज उनको कुछ डिसीज नहीं है, वो ऐसे ऐसे मणि घुमा रहे हैं, मणि भी नहीं हाथ में, लेकिन वो इतनी हैबिट हो गई है, इतनी आदत हो गई है, आत्मा तक पहुंच गई आदत, वो आदत काम आएगी अल्टीमेटली, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी के? एनी क्वेश्चन?
थोड़ा सा सरल में बच्चों के, थोड़ा सा मैं भी दूंगा।
बच्चों के लिए सरलता से बताना है तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप बड़े भाग्यवान हो कि आपका घर, आपका जन्म भक्तों के परिवार में हुआ है, श्रद्धालुओं के परिवार में है, इसलिए आप लोगों को भगवान के कीर्तन में, भजन में इंटरेस्ट लेना चाहिए और यही आपको जीवन में आनंद देगा। ये स्टोरीज भगवान की, ये भगवान का कीर्तन, भजन, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद, इसी में आनंद है। बाकी सब चीज़ में क्या कहते हैं उसको, एजिटेशन है, एजिटेशन इट्स लाइक नहीं, बाकी सब चीज़ों में कह रहा हूँ, टीवी में या और कुछ वस्तुओं में माइंड इज एजिटेटेड, क्योंकि भगवान के सन्निधि में आएंगे आनंद और शांति। आप लोगों को जितना 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना भी हो उतना भगवान के नाम का जप करना चाहिए। बाकी तो वातावरण अनुकूल है ही, इसमें कोई गलत वातावरण नहीं है, पवित्र वातावरण, सात्विक वातावरण है, संस्कार वाला वातावरण है, हाँ तो यदि भाग्य की बात है तो उस भाग्य का लाभ उठाना चाहिए। बैकग्राउंड इज बेस्ट, यू हैव टू डू योर बेस्ट। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा भगवान की, हाँ आई विल टेल यू वन स्टोरी, स्मॉल स्टोरी। भगवान जब 3 महीने के हुए ना तो उन्होंने करवट बदली, जब करवट बदली तो ब्रज में सब आनंद हो गया, कन्हैया ने करवट बदली। जो भी भगवान करते हैं वो सबके लिए आनंद की बात होती है। जब भगवान दूध पीते थे माँ के घर स्तन से तो छोटे छोटे दांत दिखाई पड़ते थे यशोदा मैया को, तो देख करके बड़ी खुश होती थी वो, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मोती से दांत आ रहे हैं। तो जब वो करवट बदली तो मैया ने बोला कि उत्सव होना चाहिए, फेस्टिवल होना चाहिए, सब ब्राह्मणों को बुलाया, सब ब्रजवासियों को बुलाया, भोजन का इंतजाम किया, वाद्य वाद्य बजाने वाले को बुलाया, गाने वालों को बुलाया, नृत्य करने वाले को बुलाया, सबको बुलाया, और बड़ा फेस्टिवल हो गया। यहाँ पर बैठ के वो लोग गा रहे हैं, यहाँ पर बैठ के लोग नाच रहे हैं, यहाँ पर बैठ के लोग बजा रहे हैं, ब्राह्मण यहाँ बैठ के श्लोक बोल रहे हैं, यहाँ पर विधि हो रही है, यहाँ पर गायों के पूंछ को भगवान को लगाया जा रहा है, और बड़ी सुंदरता से ब्राह्मणों को दान दिया गया, ब्राह्मणों ने बालक को आशीर्वाद दिया, गाय के पूंछ को जगह जगह लगाकर भगवान के नाम का उच्चारण किया, और वो सब हो गया धूमधाम, सबसे वाद्य बजा, एकदम फेस्टिविटी, एवरीबॉडी इज डांसिंग एंड सिंगिंग, यू नो, ऐसा कहते हैं हमारे भारत में जो उत्सव होता है तो विदाउट डांसिंग नहीं होता है। महोत्सव का एक अविभाज्य अंग है डांस, तो सब आनंद हो रहा है। तो उतने भगवान तो नन्हे बालक थे ना, 3 साल 3 महीने के, तो वो भूख लग गई उनको, तो मैया ने उनको दूध पिलाया, पेट भर गया तो नींद आ गई, तो बहुत लोग थे, मेहमान लोग थे, तो उनके पास एक बड़ी बैलगाड़ी थी, हमारे जो कंसर्न है बैलगाड़ी की वो तो यहाँ से यहाँ तक होती है, वो जो बैलगाड़ी थी वो एक कमरे के समान थी, उस पर सोने की जगह भी थी। तो मैया ने बालक को अपने गोद में लिया और वो भी उसको सुलाने के लिए खुद भी सो गई, मतलब सोने गई, उसको सुलाने के लिए उसको गोद में ले लिया और सुलाया, बालक सो गया, तो उसको सुला के मैया वापस मेहमानों को देखने के लिए चली गई। उतने में कंस की तरफ से एक राक्षस आया, वो वायु रूप शरीर से आया, लाइक अ घोस्ट ही केम, और वो उस बैलगाड़ी पर बैठ गया अदृश्य रूप में, इनविजिबल फॉर्म। जैसे वो बैठ गया ना तो बैलगाड़ी का पहिया आधा जमीन में क्या कहते हैं उसको, गड़ गया, वायु रूप था फिर भी उसका जो प्रभाव था ना, जैसे ही वो उस पर आ गया ना, उस पर अभी तक उसने कुछ किया नहीं, खाली आ गया उसके ऊपर, तो गाड़ा जो है वो जमीन के अंदर धस गया। फिर उसको उसका प्लान था कि मैं इस बैलगाड़ी को तोड़ दूं और सारा सामान बालक पर गिर जाएगा तो बालक समाप्त हो जाएगा. आई विल किल कृष्णा बाय ब्रेकिंग दी कार्ट. लेकिन उसके पहले भगवान ने केवल अपने नन्हा पैर उठाया और उस बैलगाड़ी को लगाया ऐसे ऐसे खेल खेल में. बच्चे कैसे नींद में ऐसे करते हैं ना पैर, ऐसे वैसे पैर बाहर निकाला और वो पहिए को केवल स्पोक्स को ऐसे टच किया तो पूरी गाड़ी टूट के टुकड़े टुकड़े होके गिर गई और राक्षस का देहांत हो गया. और कुछ बच्चों को यशोदा माया ने रखा था, देखो मैं इसको सुला रही हूँ, आप यहाँ खड़े रहना, देखना क्या हो रहा है, रोया तो मुझे बुला लेना. तो वो देख रहे थे, तो वो देख रहे, अरे इतने नन्हे से पैर बाहर आया, मतलब चादर के बाहर आया, इतनी इतनी छोटी छोटी उंगलियां, उनसे खाली वो पहिए को टच किया तो पूरा बैल का गाड़ा जो है टूट के धाड़ धाड़ करके बर्तनों के साथ में गिर गया. तो वो आवाज से मैया भाग के आई, क्या हुआ? तो बच्चा कहते हैं कि कन्हैया को भूख लग रही थी इसलिए उसने पैर उठा के ऐसा झाड़ा, लेकिन पैर पहिए को लग गया और पूरा पहिया टूट के पूरी गाड़ी टूट के सब बर्तन सब गिर गए. तो उनको सबको विश्वास नहीं हुआ, बोले बालक लोग तो ऐसे ही बोल लेते हैं, उनको क्या मालूम है. मैंने हमने देखा कि कन्हैया का पैर लग के पूरा बैलगाड़ी टूट गया. तो भगवान है ना, बालक है तो क्या हुआ. तो शक्टासुर नाम का राक्षस था, उसको भगवान ने ऐसे ही प्रेम से मार दिया विदाउट एनी एफर्ट. ये तीन तीन महीने की उम्र की स्टोरी है भगवान की. ओनली 3 मंथ्स ओल्ड बेबी. हाउ ओल्ड इज ध्रुवा? 6 मंथ्स, हाफ द एज ऑफ ध्रुवा. श्री कृष्णा किल्ड शक्टासुर. और फिर मैया तुरंत आके बालक को अपने गोद में लेती, अरे बाप रे मैं कैसे इतना बिजी क्यों हो गई, मैं छोड़ के चली गई, तो पता नहीं अगर ये उसके ऊपर गिरता तो क्या होता. बालक तो हंस रहे हैं. ऐसे ही कृष्ण 1 साल के हो गए तो मम्मी के लोग आके बर्थडे बनाना चाहिए. माय बेबी कृष्णा मस्ट सेलिब्रेट हिज बर्थडे, व्हाई नॉट. यस वापस वही ब्राह्मण, फिर सब गेस्ट लोग, खाना पीना, डोनेशन, श्लोका, डांसर, सिंगर्स, प्लेयर्स, एवरीबडी केम. और फिर बीच में अभी देखो, अभी हमारे घर में परसों भी यज्ञ होगा ना, ध्रुव के लिए यज्ञ होगा. लेकिन ध्रुव को बीच में पिलाना पड़ेगा ना भोजन, दूध पिलाना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा. तो वो तो ड्यूटी चलते रहते ना, तो फेस्टिवल हो तो क्या हुआ, यू कैन नॉट डू नॉट डू दिस थिंग्स. तो वैसे ही फेस्टिवल चल रहा है, सब एवरीबडी इज, वो फेस्टिवल का हीरो भी वही है, उसके ऊपर संस्कार भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बर्थडे का. लेकिन बीच में भूख लग रही है ना उसको, तो उसको दूध पिलाया जाता है और गोद में रखकर दूध पिलाता है, उसको नींद आती है. अचानक जब माता उसको दूध पिलाती है और वो सोता है तो वो अचानक इतना भारी होता है कि अभी जैसे मैं किताब लेकर कब से बैठा हूँ यहाँ पर, मैं कितनी बात कर रहा हूँ लेकिन किताब थोड़ी मुझे महसूस कर रही कि किताब मेरी गोद में है, पैर दुख रहा है मेरा, ऐसा नहीं हो रहा है ना. अचानक की किताब अगर समझो 100 किलो की हो गई तो मैं क्या करूँगा, उसको रखूँगा बाजू में. अरे पैर पे 100 किलो का भार सहन नहीं हो रहा है मुझे. ऐसे ही भगवान का शरीर इतना सा था, वो इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि उसको अपने गोद में रखा नहीं गया उसको, तो उसने उसको नीचे कर दिया. फिर बच्चों को बताया कि मैं आ रही हूँ जरा थोड़ा देख के, थोड़ा आती हूँ जरा देखना इसको. जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ा तूफान आया, ऐसे गोल, उसको कहते हैं बवंडर, क्या कहते हैं साइक्लोन, हाँ ऐसे गोल 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 घूमते आया. और इतना अंधेरा हो गया तुरा धूल की वजह, सब धूल उड़ गया आकाश में उस बवंडर की वजह से. उसमें उसने कृष्ण को उठा लिया, ले गया आकाश के अंदर. तो भाई वो जब वो घूमता है ना तो आवाज ना, सब जगह आवाज आती है, सब दरवाजे आवाज करने लगते हैं. तो माया भाग के आई, जहाँ रखा था वो बालक है नहीं, वेर इज ही गॉन. वो देख रहे सब उड़ रहा है आकाश में, फर्नीचर भी आकाश में उड़ रहा है, सब पेड़ भी आकाश में जा रहे हैं. और आकाश में देखते हैं कि मेरा बालक कोई राक्षस उसको आकाश में लेके जा रहा है. कुछ देर बाद में सब चिंता में, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है. कुछ देर बाद में धड़ाड़ करके आवाज आती है, बिग साउंड. तो क्या देखते हैं, गोकुल के सब बॉर्डर के बाहर में वो राक्षस जो है तृणावर्त, हाँ साइक्लोन के रूप में आया था, वो गिरा हुआ है और उसके कंधे पर हमारे कन्हैया जी खेल रहे हैं. तो हुआ क्या बीच में, जब वो उनको उठा के ले गया ना तो भगवान उसके कंधे पर थे कंधे पर लेके उठ गया वो, तो भगवान ने जाकर उसका गला पकड़ा और गले को दबा दिया तो वो मर गया। तो मर गया तो इतना ऊपर गया था तो वहां से धड़ार करके गिर गया नीचे। इतना सा बालक 1 साल का। आपका उम्र कितना है? व्हाट इज योर एज? हाँ 8 years। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 year बेबी। सो स्मॉल, सो स्मॉल फिंगर्स, बट वेन ही इज होल्डिंग दैट डीमन्स नेक, द डीमन इज सफरिंग। सेड लीव मी, लीव मी, लीव मी। बेबी इज नॉट लीविंग हिम, बेबी इज होल्डिंग टाइट एंड टाइट एंड टाइट। एंड देन तिलावर्त डीमन डाइड। वेर ही डाइड? इन द स्काई। So how can he remain in the sky after dying? He fell down and he died. I mean, he died and he fell down. Everybody ran and he saw, my God, such a big demon. Such a small baby on his neck, playing nicely. So everybody was scared, my God, what to do? So everybody ran and picked the baby up first. Kuch hua to nahi usko. Apas brahmanon ko bulaya. Mantra bolo uske liye, please. Gaya ke bachche ko leke aaya, usko pooch liya. Sab jagah touch kiya usko. Mantra bole, kyun aise ho raha hai, pata nahi. हम लोग तो फेस्टिवल करते हैं, बीच में कुछ गड़बड़ होती रहता है, पर नो गड़बड़ फॉर कृष्णा। वो तो आराम से फेस्टिवल बनाते हैं और डेमन्स को भी मार देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो। धन्यवाद सबका।